मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 29 जनवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं, हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मयंक जोध, जो बुआ बिचिया मध्य प्रदेश से हैं, भुआ बिचिया मध्य प्रदेश से, और आशीष कुमार सिंह, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो मयंक और आशीष, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, आज मुख्य विषय के तहत हम लोग स्थायी समितियों पर बात करेंगे। चलिए मैं विषय बता देता हूं। मैं थोड़ी सी दो तीन आप लोगों के प्रश्न हैं उनके थोड़ा सा जवाब उत्तर देना चाहूंगा। कई स्टूडेंट्स ने पूछा है, खासकर हमारी क्लासेस के बारे में दो प्रश्न है। पहला तो ये है कि क्या हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लें फिर कोचिंग में आएं, और दूसरी जगह भी अगर हमें कोचिंग करनी है तो क्या हम अपनी तैयारी करके कोचिंग में जाएं, ये पहला प्रश्न है। मित्रों देखिए, मैं आपको एक सजेशन यहां देना चाहूंगा, ये मेरा विनम्र सुझाव है, आप सब अपने अपने ढंग से इस पर विचार करें और निर्णय लें। देखिए, बेसिकली जो कोचिंग है, स्पेशली अगर आप सिविल सर्विस की बात करते हैं, तो कोचिंग एक तरह से पढ़ने का तरीका बताए जाने का नाम है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। स्ट्रेट पढ़ाई करने से बात नहीं बनती है, या यूं कह लीजिए कि कोचिंग एक ऐसा संस्थान है जो पढ़ाने के माध्यम से आपके अंदर एक एनालिसिस की क्षमता पैदा करता है। अब आप देखिए कि अगर आपको पढ़ना आता है सिविल सर्विस के हिसाब से, तो ठीक है, आप पढ़ाई तैयारी के दौरान भी कोचिंग कर सकते हैं, अपनी तैयारी करके भी कोचिंग कर सकते हैं, या बिना तैयारी के भी कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो तरीका नहीं मालूम है कि पढ़ा कैसे जाना चाहिए, तो बट नेचुरल है कि फिर ज्यादा अच्छा है कि आप तैयारी करने से पहले कोचिंग करें, क्योंकि कोचिंग फिर आपको ये बता सकेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, आपको दिशा निर्देश दे सकेंगे, आपको सिलेबस बता सकेंगे, आपको उस डिसिप्लिन में ढाल सकेंगे, तब आप उसका ज्यादा फायदा उठा सकेंगे। जैसे हमारे यहां की ही जो 15 दिन की क्लासेस है, ये बेसिकली आपको सिविल सर्विस की पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, कंप्लीट तैयारी, मतलब प्री से लेकर के और इंटरव्यू तक की, इसके बारे में लगभग 90 घंटे क्लासेस होती हैं, यही केवल बताया जाता है आपको। तो अब अगर आप तैयारी करके आते हैं, तब फिर आप नई तैयारी के बारे में जान रहे हैं, तो अगर दोनों मैच कर जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दोनों मैच नहीं करते तो फिर उनमें टकराव पैदा होगा, तो पता लगा कि आपने जो तैयारी की थी अब उससे मैच नहीं कर रहा है, तो आपको अपनी तैयारी पर संदेह होने लगेगा, तो बेकार जाएगा। इसीलिए देखिए, सबसे अच्छा जो उपाय होता है, अगर सही मायने में अगर आप पूछे, तो वो ये होता है कि आप तैयारी करने के लिहाज से चूंकि कोचिंग कर रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि बिना तैयारी किए ही कोचिंग जाएं। लेकिन अगर आपने तैयारी कर ली है और आप अपने उससे संतुष्ट नहीं है, तब आप जा सकते हैं, आपकी जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो करेक्ट हो जाएंगी। दूसरा जो प्रश्न है मित्रों, कई लोगों ने पूछा है कि हम लोगों की, खासकर जो AFEIS एकेडमी फॉर एक्सीलेंस का जो की कोच क्लासेस हैं, और कहां कहां लगती हैं। मित्रों, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारी क्लासेस भोपाल के सिवाय और कहीं भी नहीं लगती हैं, सिर्फ भोपाल में ही क्लासेस होती हैं, और साल में सिर्फ दो बार होती हैं, जिसमें अभी आपके फरवरी, इसमें मार्च में हो रही है, राइट। मित्रों, कुछ बहुत से स्टूडेंट ने, पता नहीं क्यों, कभी कभी होता यह है कि जैसे सभी तरफ एक ही ढंग से सोचा जा रहा हो, ढेर सारे प्रश्न आए कि जिस डीडी न्यूज की आप बात करते हैं उसके टाइमिंग्स क्या है। दोस्तों, ये बड़ा सामान्य सा प्रश्न है, बड़ा सरल सा प्रश्न है, लेकिन चलिए मैं बता देता हूं। मैं जिस डीडी न्यूज की बात करता हूं, दूरदर्शन न्यूज की, जो आपको सुननी देखनी चाहिए, वह होती है रात के 8 बजे की न्यूज, 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक, ये 1 घंटे की न्यूज होती है, ये हिंदी में होती है पहले, और 9 से 10 तक फिर वो इंग्लिश में होती है। और ये मैं जो बात करता हूं, ये सोमवार से शुक्रवार तक इनके टाइमिंग्स ये होते हैं, शनिवार रविवार को बदल जाते हैं, तो लेकिन आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सोमवार से शुक्रवार तक की न्यूज हुआ करती है। रात में 8 बजे से 9 बजे तक यदि आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो, और 9 बजे से 10 बजे तक रात में यदि आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो। तो मित्रों, ये कुछ आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर थे। अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। जैसा कि मैंने मुख्य विषय के बारे में बताया, हम लोग स्थायी समितियों के बारे में आज कुछ बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं, कुछ एक दो बातें आपसे करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री ने जो मन की बात की है हमारे देश के साथ में, उसमें आपने जन औषधि केंद्र का नाम सुना होगा। जन औषधि केंद्र, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, है बहुत ही सामान्य सी बात, लेकिन अगर आपने ठीक तरीके से इसे नहीं पढ़ा है तो फिर आप परीक्षा में पक्का है कि गड़बड़ करके आ जाएंगे, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। अनुमान लगा करके तो आप कुछ लिख करके आ ही जाएंगे, लेकिन अनुमान लगाने से आपको उतने नंबर नहीं मिलेंगे जितने नंबर आपको सेलेक्ट होने के लिए चाहिए। दोस्तों, अब इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं, बहुत ही बेसिक जानकारी, कि इसका जो सही नाम है वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना केंद्र। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना केंद्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है PMBJPK। इसको छोड़िए, ये इसका नाम है, सामान्यतर बोलचाल में जन औषधि केंद्र कहते हैं। देखिए, ये एक सेंटर है, न्यूज में भी ये बात थी कि 3000 केंद्र पूरे देश में खोले गए हैं, और इनका जो पर्पज ये है कि इन केंद्रों पर पहली बात तो है कि क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाए, गुणवत्ता वाली औषधियां लोगों को उपलब्ध कराई जाए। दूसरी बात यह है कि उन्हें बहुत ही सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि वो उन्हें खरीदने की स्थिति में आ सके। और आपने जेनेरिक मेडिसिन का नाम सुना होगा, जेनेरिक मेडिसिन वास्तव में बहुत सस्ते होते हैं, फिर जो ब्रांड में जब कन्वर्ट होते हैं तो बहुत महंगे हो जाते हैं, लेकिन सामान्य आदमी उसको नहीं समझ पाता। फिर डॉक्टर जो लिख देता है, हम वही दवाई लेने के लिए बाध्य हो जाते हैं और वही हम लेते भी हैं। तो गुणवत्ता युक्त औषधि सस्ते कीमत पर उपलब्ध कराना, यह इसका पर्पज है। इसकी शुरुआत 2008 में अमृतसर में की गई थी, बहुत पहले की गई थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा चर्चित नहीं रही। तो बाद में फिर 2015 में इसे फिर शुरू किया गया है, और जो अभी इसका वर्तमान नाम है ये 2016 में इसे दिया गया है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका जो संचालन करने का जो दायित्व तो है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये इसे संचालित करता है, इसके अंडर में मतलब ये सब काम करते हैं, और उनका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, वह इसको इसकी देखरेख करता है। तो एक सामान्य सी आपको मैंने जानकारी दी है, ताकि प्री में अगर कुछ पूछ लिया जाता है तो आप उसका सही उत्तर दे सके। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी खबर थी वो बजट सत्र की खबर थी, कि आज से पार्लियामेंट का बजट सत्र शुरू हो रहा है। बजट सत्र के बारे में आपने न्यूज में कुछ बातें सुनी हैं, वो आपको मालूम भी वैसे भी होनी चाहिए कि जो बजट सत्र होता है, बजट सेशन, वो सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। केवल इसलिए नहीं कि उसमें बजट पारित होता है, बल्कि इसलिए भी कि सबसे लंबा भी होता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक इसमें रखे जाते हैं। मतलब जानबूझ करके नहीं कि बजट सत्र में ही आप रखेंगे, लेकिन चूंकि लंबा सेशन होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें ढेर सारे जो विधेयक होते हैं वो पेश किए जाते हैं। इसकी एक बड़ी विशेषता ये होती है बजट सत्र की, देखिए हमारा बजट सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है, अलग अलग मानसून सत्र होता है, लेकिन आपने बजट सत्र को छोड़ करके किसी भी सत्र में ये नहीं पाया होगा कि उसकी शुरुआत, जो सत्र की शुरुआत होती है वो राष्ट्रपति जी के संयुक्त उद्बोधन से होती है, कहीं भी आपने नहीं पाया होगा। लेकिन बजट सत्र की शुरुआत हमेशा राष्ट्रपति जी के उद्बोधन से होती है। संयुक्त उद्बोधन का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदस्य, दोनों हाउस के मेंबर्स एक ही जगह पर बैठते हैं और राष्ट्रपति जी उन्हें संबोधित करते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं तो आप अगर आप डायरेक्ट सुनेंगे तो आप पाएंगे कि राष्ट्रपति जी बार बार कहेंगे मेरी सरकार, मेरी सरकार, मेरी सरकार, और संविधान के तहत तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सरकार जो है वो राष्ट्रपति जी की ही है, और वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर काम कर रहे हैं, है ना। अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं तो वो प्रधानमंत्री ही सरकार है। कोई अखबारों में आप नहीं पढ़ते हैं कि कोविंद जी की सरकार, अखबारों में यही पढ़ते हैं कि मोदी जी की सरकार या भारत बीजेपी की सरकार या संयुक्त गठबंधन की सरकार, इसी तरह के नाम हम पढ़ते हैं। तो लेकिन ये टेक्निकल वर्ड है और इसमें राष्ट्रपति जी दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके चलते हैं। पहला तो ये है कि जो वर्तमान सरकार है इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं अभी तक की, और आप देखेंगे कि यह भी बताने की कोशिश की जाती है कि अब हमारा रोड मैप क्या है, आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो इन बातों से वो यूं कह लीजिए कि संसद के माध्यम से पूरे देश को अवगत करा देते हैं। मित्रों, इसी में आपने न्यूज में सुना होगा, जो सुबह न्यूज थी इसकी, कि उसी में प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के तहत ही स्थायी समितियों की बात कही थी और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी स्थायी समितियों को जो विधानसभा की प्रक्रियाएं हैं वो अपनानी चाहिए और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर, क्योंकि यहां बात की जाती है, इसको लेकर के मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा यहां करना चाहूंगा। राइट, तो अब मैं मुख्य विषय पर मित्रों आता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कही तो उनके कहने का उद्देश्य क्या था। देखिए, जो स्थायी समितियां होती हैं, नाम से आपको मालूम है कि वो परमानेंट होती है, है ना। सामान्यतः संसद में जितनी समितियां होती हैं उसमें एक तो परमानेंट नेचर की होती है, यानी कि वो समितियां काम करती ही रहेंगी लगातार। दूसरी एडहॉक नेचर की होती है, जिसे हम अस्थायी समितियां कहते हैं, कि समिति का काम हो गया, इसके बाद उसको खत्म कर दिया गया, फिर जब दूसरी की जरूरत पड़ी तो दूसरी समिति बना दी गई। तो दो तरह की समितियां होती हैं। इनमें एक समिति होती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों विभागीय स्थायी समितियां। विभागीय स्थायी समितियां यानी कि हमारे जितने भी मंत्रालय हैं, मंत्रालयों के जितने भी विभाग हैं, मान करके चलिए कि वो किसी न किसी स्थायी समिति के अंतर्गत आती ही आती हैं। देखिए, हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को लगता है, आम लोगों को, कि सारे कानून, सब कुछ बहस, जो कुछ भी हो रहा है वो केवल संसद में हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा में हो रहा है। नो डाउट कि वहां तो बहस हो ही रही है, लेकिन जो सही बहस होती है, जो एकेडमिक बहस होती है, वो इन स्थायी समितियों में होती है। मतलब एक समिति है, मान लीजिए कि उस समिति के तहत दो मंत्रालय हैं, चलिए तो अब इन दो मंत्रालय से संबंधित जो मामले होंगे वो ये समिति, उससे जुड़ी हुई स्थायी समिति उस उन मामलों को देखेगी। किन मामलों को, जैसे बजट अनुदान की मांग होगी तो उसको ये हमारी स्थायी समिति देखेगी। उस उन मंत्रालयों को कितना धन दिया जाए, बजट में कितनी उनकी डिमांड होगी, इसका निर्धारण स्थायी समिति करेगी। और इसके साथ ही साथ ढेर सारी ऐसी चीज, जैसे मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री है, अब होम मिनिस्ट्री को एक विधेयक पेश करना है संसद के सामने, लोकसभा या राज्यसभा में, तो उन विधेयकों को कौन जांचेगी, उन विधेयकों की जांच पड़ताल सब कुछ ये स्थायी समिति ही करती है। आपने देखा होगा, अभी ही आप सुनेंगे बजट सत्र के दौरान कि मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी जा रही है, तो उनको कौन देखेगा, उनको कौन, उनकी जांच परख कौन करेगा, उसको भी स्थायी समिति ही करेगी। तो आप देखिए कि हम देख रहे हैं कि बहस तो संसद में हो रही है, लेकिन उस पर पहले ही जो स्थायी समितियां हैं वो गंभीर रूप में विचार कर चुकी हैं। इनका जो करैक्टर होता है वो बहुत अद्भुत होता है मित्रों। जैसे सामान्यतया ये देखा गया है कि जो स्थायी समितियां होती हैं उसमें, ये जो विभागीय स्थायी समितियां, इनमें 31 मेंबर्स होते हैं सामान्यतया, और 31 मेंबर्स में से 21 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं, है ना। लोकसभा के स्पीकर जो है वो लोकसभा के सदस्य सजेस्ट कर देते हैं और हमारे जो सभापति हैं वो राज्यसभा के सदस्य सजेस्ट कर देते हैं, और इसमें अलग अलग दलों के लोग होते हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग होते हैं। तो 31 लोग मिलकर के इस तरह से मान लीजिए कि एक स्थायी समिति जैसे उन्होंने बना ली। इसकी एक जो सबसे बड़ी खासियत होती है, दो पॉइंट होते हैं सबसे बड़े। मित्रों देखिए, जैसे संसद में जो बहस होती है वो पार्टी लाइन पर होती है ना, कि पूरी पार्टी, जैसे बीजेपी ने एक किसी इश्यू पर एक स्टैंड लिया तो जितने भी बीजेपी के सदस्य होंगे वो इसी स्टैंड पर बोलेंगे। कांग्रेस ने लिया तो जितने भी सदस्य होंगे वो अपने स्टैंड के आधार पर बोलेंगे। वहां सच पूछे तो पार्टी लाइन काम करती है, सदस्यों के अपने मत काम नहीं करते, अपने विचार काम नहीं करते। अगर वो पार्टी लाइन से अलग अपना विचार रखता है तो संसद में नहीं बोलेगा, सामान्यतः ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन स्थायी समितियों में जो बहस होती है वो पार्टी लाइन से बिल्कुल ऊपर उठकर होती है, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो लोग अपने अपने विचार बड़े खुलकर रखते हैं। तो आपने नहीं देखा कि अब यहां बहुत अच्छे से विचार हो रहे हैं, अदरवाइज पार्टी लाइन में तो पार्टी का हित वो देखेंगे, हो सकता है कि उसमें राष्ट्र का हित न सदता हो, या आप यूं कह लीजिए कि जो विधेयक की भावना है वो नष्ट होती हो, उद्देश्य डिफीट होता हो। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, सब खुलकर बात करेंगे। और आप देखें कि स्थायी समितियों में जो बहस होती है वो कभी अखबारों में उन सब में कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी, वो अपने ढंग से बहस करते हैं। और अगर स्थायी समिति को जरूरत महसूस होती है तो बकायदे वो उस विषय के विशेषज्ञों को बुलाते हैं और विशेषज्ञों को बुला करके उनसे चर्चा करते हैं। तो इनका जो चरित्र होता है आप यूं कह लीजिए, वैसे आप देखेंगे तो लोकसभा आप संसद का एक छोटा सा रूप है ना, उसमें लोकसभा के भी सदस्य हैं और राज्यसभा के भी सदस्य हैं, लेकिन जो बहस की क्वालिटी है वो एकदम डिफर हो जाती है। इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। और उसी बात की तरफ प्रधानमंत्री जी ने इशारा भी किया है कि जो हमारी स्थायी समितियां हैं वो थोड़ा सा और ज्यादा जमकर काम करें, बहुत अच्छे से काम करें, बहुत अच्छा सा अपना रोल निभाएं, तो फिर हमारी जो संसद है उसे और ताकत मिलेगी और उसमें ब्रिलियंसी आएगी। तो मित्रों, ये स्थायी समितियों के बारे में मैंने थोड़ी सी बातें की हैं, और मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि प्लीज आप सब इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे मैंने देखा है कि जनरली स्टूडेंट अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड मत कीजिएगा। मित्रों, अब मुख्य विषय के बारे में इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। अंत में आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: भगीरथ रायगर भीलवाड़ा राजस्थान से, भानु प्रताप सिंह मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, विपिन, तनुप्रिया सिंह मोहाली पंजाब से, शंकरलाल मीना, अंकित वर्मा, मनीष अग्रवाल पिथौरा छत्तीसगढ़ से, ज्योति रुद्रपुर से, सैयद मोहम्मद अब्बास, राहुल कौशल रांची झारखंड से, सुभाष सिंह भभुआ बिहार से, अश्वनी द्विवेदी सतना मध्य प्रदेश से, और नरगिस जहां। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।